आर्यांश और उसके घर से पीछा छुड़ाकर दीवा थोड़ा टाइम बिताने के लिए वीकेंड पर अपने घर पर आई हुई थी। आज सुबह जब वो रक्षित से मिली तो उसका मूड काफ़ी ऑफ हो गया था, लेकिन बाद में समय और इनाया के साथ मूवी देखने पर उसका मूड काफ़ी हद तक फ्रेश भी हो गया था। घर पर आने के बाद दीवा अपने कमरे में समय के साथ कॉल पर बात कर रही थी। इस बीच आर्यांश का कॉल आया। दीवा ने जल्दी से समय का कॉल कट कर दिया और आर्यांश को कॉल बैक किया। अंदर के अंदर दीवा खुद को आर्यांश के सवालों के लिए तैयार करने लगी। जैसा कि दीवा को अंदाज़ा था, उसके कॉल करते ही आर्यांश ने कोल्ड वॉइस में बोला, किससे बात कर रही थी तुम? मैंने बीच में काफ़ी कॉल किए थे, तुम्हारा कॉल बिजी क्यों जा रहा था? मैं बस अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, दीवा ने खुद को शांत करके जवाब दिया, हालांकि अंदर ही अंदर उसे आर्यांश की इस हद से ज़्यादा पजेसिवनेस से काफ़ी गुस्सा आता था। तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है, और अगर कोई फ्रेंड है भी तो इतनी देर बात करने की क्या ज़रूरत थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे छुपकर तुम किसी और के साथ रिलेशन में हो? आर्यांश ने कहा। बोलते वक्त उसका लहजा और ज़्यादा सर्द होने लगा था। दीवा ने गहरी सांस ली और दांत पीसते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं किसी और के साथ रिलेशन में आने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम्हें ही झेलना इतना मुश्किल हो रहा है तो किसी और आदमी को एक टाइम में झेलना मेरे बस की बात नहीं है। दीवा ने अब लाइट ऑन कर ली थी। वो अब आराम से लेटने के बजाय उठकर बैठ भी गई थी। अच्छा तो तुम मुझे झेल रही हो, आर्यांश ने सिर हिलाकर कहा। तो दीवा को तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हो गया। दीवा ने हड़बड़ाकर जवाब में कहा, नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं किसी और के साथ रिलेशन में आने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम्हें ही झेलना इतना मुश्किल हो रहा है तो किसी और आदमी को एक टाइम में झेलना मेरे बस की बात नहीं है। आर्यांश ने दीवा की बातों को वैसे का वैसा सुना दिया था। दीवा ने शर्मिंदगी से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसने धीरे से कहा, अगर कोई इंसान थोड़ा परेशान होता है तो उसकी ज़ुबान फिसल जाती है। बस यूं समझ लीजिए कि गलती से मुझे भी यह सब निकल गया। अचानक आर्यांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो जानता था कि दीवा ने यह सब अनजाने में बोला है, इसलिए उसने इस बात को ज़्यादा नहीं खींचा। वैसे भी दीवा जब इरिटेट होकर उसे कुछ कहती थी तो उसे और मज़ा आता था। अच्छा ठीक है, इस बार जाने दे रहा हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना। तो आज तुम अपने घर गई हुई हो, आर्यांश ने कहा। उसका मूड अब थोड़ा हल्का लग रहा था। लगता है सुमन माँ ने आपको सब कुछ बता दिया मिस्टर कपूर, दीवा ने जवाब दिया। आर्यांश का मूड जो कुछ पल पहले ही सही हुआ था वो फिर से बिगड़ गया था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब दीवा उसे फॉर्मल तरीके से मिस्टर कपूर बुलाती थी। अगर इस वक्त दीवा आर्यांश की आंखों के सामने होती तो वो उसे खींचकर कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेता और उसे उसकी गुस्ताखी की सज़ा ज़रूर देता। आर्यांश ने सख्त लहजे में कहा, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। उसका टोन सुनकर ही दीवा को समझ आ गया था कि वो गुस्से में है। दीवा ने धीमी आवाज़ में हड़बड़ाते हुए कहा, आर्यांश? हालांकि उसने काफ़ी धीमी आवाज़ में कहा था पर फिर भी आर्यांश को सुनाई दे रहा था और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आर्यांश ने हल्के तरीके से कहा, दैट्स लाइक माई गर्ल, मेरा वेट करना, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। दीवा ने इतना ही कहा। आर्यांश का बर्ताव उसे काफ़ी हैरान करता था और वो इस बारे में सोचती तो उसे और ज़्यादा उलझन होती थी। एक ही पल में उसका टोन एकदम हाई हो जाता था, कभी बिल्कुल सख्त तो कभी बिल्कुल सॉफ्ट। एक इंसान कुछ ही सेकंड में अपने बर्ताव को इतना कैसे बदल सकता था? वहीं दीवा की तरफ से इतना फॉर्मल सा छोटा रिप्लाई सुनकर आर्यांश की आंखों में भूख नजर आने लगा। उसने धीमी आवाज़ में उसे गुड नाइट कहा और फिर कॉल कट कर दिया था। शायद दीवा उसके लिए वो महसूस नहीं करती थी जो वो महसूस करने लगा था और ये फीलिंग उसे तकलीफ देती थी। आर्यांश का कॉल कट होते ही दीवा के चेहरे पर राहत की सांस थी। इस समय इनाया दीवा के कमरे में आई थी। जब उसने दीवा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट देखी तो वो शरारती अंदाज में बोली, चेहरे पर इतनी क्यूट सी स्माइल, किससे बात की जा रही थी दीदी? दीवा ने तुरंत ही अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को नॉर्मल किया जैसे वो अपनी कोई चोरी छुपा रही हो। उसने कहा, किसी से नहीं, तुम मुझ पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लगी हो। अच्छा बताओ कि तुम्हें वेकेशन पर क्या होमवर्क मिला है? अब तो मुझे और शक हो रहा है, आप मेरी बात को टाल क्यों रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप समय सर से बात कर रही थी? इनाया ने मुंह बनाकर कहा। वो दीवा के पास में आकर बैठ गई थी। इनाया की बात सुनकर अचानक दीवा के चेहरे पर भी शरारती मुस्कुराहट आ गई। उसने इनाया की नाक को पकड़कर खींचते हुए कहा, तुम्हारे समय सर से मुझे कुछ याद आ रहा है, लगता है तुम्हें इस बार वेकेशन पर ज़्यादा वर्क नहीं मिला, तभी तुम इधर उधर की बातों पर ध्यान दे रही हो। ऐसा करती हूँ कि उसे कॉल करती हूँ और बोलती हूँ कि अभी अपने स्टूडेंट्स को क्लास लगाना शुरू कर दे। नहीं प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, इनाया ने हड़बड़ाहट के साथ कहा। हाँ तो तुम भी ज़्यादा बातें मत बनाओ, वैसे भी मेरे और तुम्हारे समय सर के बीच में कुछ नहीं है, हम बस अच्छे फ्रेंड्स हैं, तुम आजकल के बच्चों को ज़्यादा ही आगे बढ़ जाते हो, दीवा ने सिर हिलाकर कहा। ठीक है, लेकिन समय सर जब आपसे बात करते हैं तो काफ़ी सॉफ्ट बिहेव करते हैं, उन्हें देखकर लगता है कि वो आपको लाइक करते हैं, इनाया ने सफाई देते हुए कहा। ये बस तुम्हारे मन का भ्रम है और कुछ नहीं, चलो अब अपने कमरे में जाकर सो जाओ, दीवा ने उसे टालने के लिए कहा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में कभी कुछ हो तो मुझे जरूर बताना, मुझे तो समय सर पसंद है, इनाया मुस्कुराकर बोली। उसने दीवा को हक करके गुड नाइट विश किया और फिर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। इनाया के जाते ही दीवा के चेहरे के भाव गंभीर हो गए थे। वो अपने और आर्यांश के रिश्ते के बारे में किसी को बता भी नहीं सकती थी, बताकर भी क्या बताती। उनके बीच एक अजीब तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसके तहत दीवा आर्यांश की गुलाम बनकर रह गई है। दीवा ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सोने जा चुकी थी। अगली सुबह संडे होने की वजह से दीवा फ्री थी, लेकिन वो आर्यांश के जिद पर भी वापस नहीं जाना चाहती थी। दीवा ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंची तो उसने देखा इनाया वहां पहले से ही मौजूद थी। दीवा ने देखा इनाया फॉरेन लैंग्वेज सीखने में लगी थी। उसे देखकर दीवा ने मुस्कुराकर पूछा, तो तुम अब अब्रॉड जाकर पढ़ना चाहती हो? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस लैंग्वेज सीखने का शौक है, इनाया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। कल जब दीवा और समय साथ में थे तब उन्होंने इनाया के बारे में भी काफी बातें की थी। दीवा चाहती थी कि इनाया स्कूल में अकेला महसूस न करे, ना ही कोई क्लासमेट उसे उसके माँ बाप को लेकर चिढ़ाए। ऐसे में समय ने उसे एक बात और बताई थी कि क्लास के ज्यादातर लड़के इनाया को पसंद करते हैं। दीवा ने उसे बारे में जिक्र करते हुए इनाया से पूछा, मैंने सुना है कि क्लास के काफी लड़के तुम्हारे पीछे हैं। हाँ, ये तो होना ही था, आखिर मैं आपकी बहन हूँ और दिखने में इतनी खूबसूरत हूँ तो कोई भी पीछे आएगा ही, लेकिन मेरा उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनाया ने पूरे एटीट्यूड के साथ जवाब दिया, जिस पर दीवा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। दीवा आगे कुछ पूछती उससे पहले इनाया ने आई विंक करके कहा, कोई मुझे कह रहा था कि समय सर के साथ उनके सिर्फ दोस्ती जितने ही रिश्ते हैं, उन्होंने क्या आपको इस बारे में बताया? ना, अब तो झूठ मत बोलिए।
हम सच में सिर्फ दोस्त हैं, मेरा छोड़ो, अपना बताओ, क्या तुम्हें कोई सच में पसंद नहीं है? इस उम्र में लड़कियां लड़कों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं, दीवा ने पूछा। सच में कोई पसंद नहीं है, मैं अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहती हूँ, इनाया बोली। ये अच्छी बात है, और तुम इतनी कम उम्र में प्यार में पढ़ना भी मत, ये बस तकलीफ देता है और कुछ नहीं, दीवा ने जवाब दिया। बोलते हुए अचानक उसकी आंखें नम होने लगी। वो रक्षित को याद नहीं करना चाहती थी, पर रक्षित उसे दिल से भी नहीं निकल पा रहा था। उसके इस बात को इनाया ने महसूस कर लिया था। इनाया के चेहरे पर भी उदासी छा गई थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या आज भी आप रक्षित भैया से प्यार करती हैं? मेरा मतलब है, आपके दिल में उन्हें लेकर कोई इमोशंस हैं क्या दी? हाँ, दीवा ने इतना ही कहा। वो चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाई। उसे रक्षित की फिक्र थी और यही फिक्र उसके दिल में बार बार दर्द पैदा करती थी। आप सोच रहे होंगे कि रक्षित ने दीवा को धोखा दिया फिर भी वो उससे प्यार क्यों करती है? तो फर्स्ट लव का एक्सपीरियंस ऐसे ही होता है, वो चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना दे, आप उसे भूल नहीं सकते हो। बस दीवा भी उसी फीलिंग से लड़ रही है।